समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। जो रातों को कोशिशों में गंवा देते हैं, वही सपनों की चिंगारी को और हवा देते हैं। एक नए दिन की नई सुबह में आकाशवाणी गोल्ड पर हम आपके साथ जुड़ चुके हैं न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे लेकर। मैं हूं मनोज और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी नीना अराकल मैथ्यू। नमस्कार नीना।
नमस्कार, गुड मॉर्निंग मनोज। माया एंजेलो सेज, नथिंग कैन डिम द लाइट व्हिच शाइन्स फ्रॉम विद इन। द पावर इज इन योर थॉट्स एंड द लाइट इज इन योर हार्ट टू मेक टुडे अ मीनिंगफुल वन। With that thought, Manoj, we welcome our listeners to a brand new and bright morning into Akashwani FM Gold on 100.1 MHz and the Akashwani network. We bring to you our daily news magazine program, Aaj Savere, wherein we bring the morning vibes to give the latest in national and international news, metro city updates, as well as some historical information related to this day, that is 19th of May 2026. Let's begin with the news headline.
जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दोनों देशों को व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत 100 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश लक्ष्य को प्राप्त करने और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करने के लिए प्रयास करने चाहिए। प्रधानमंत्री कल ओस्लो में आयोजित भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। क्राउन प्रिंस हाकोन और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गहर स्तोरे भी इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते TEPA के लागू होने के बाद द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
एफ्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है। ये एम्बिशियस टारगेट है लेकिन अचीवेबल है, और भारत में आपके इन्वेस्टमेंट को आउटकम्स में बदलना, मैं आपको विश्वास से कहता हूँ, ये हमारी गारंटी है।
प्रधानमंत्री ने भारत की मजबूत विकास गति, जनसांख्यिकी लाभांश, प्रतिभाशाली युवाओं, सुदृढ़ व्यापार प्रथाओं, निवेश अनुकूल नियामक ढांचे और प्रतिस्पर्धी संघवाद की भावना का उल्लेख किया। श्री मोदी ने भारत में समुद्री अर्थव्यवस्था, जहाज निर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज और स्टार्टअप जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नॉर्वे के अधिक निवेश को प्रोत्साहित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के हरित परिवर्तन पर बल देते हुए देश के विकास, बढ़ती ऊर्जा मांग, जलवायु प्रतिबद्धताओं और नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रिड अवसंरचना, हरित हाइड्रोजन और स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार का उल्लेख किया। उन्होंने स्वच्छ ऊर्जा निवेश, समुद्री डीकार्बोनाइजेशन, महासागर स्थिरता और जलवायु वित्त में नॉर्वे के वैश्विक नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारिक समुदायों से नई साझेदारियां बनाने, सहयोग के उभरते क्षेत्रों की पहचान करने और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने का आग्रह किया। शिखर सम्मेलन में 50 से अधिक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और भारत तथा नॉर्वे के व्यापार और अनुसंधान समुदायों के 250 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग में आई तेजी को शिखर सम्मेलन में चिन्हित किया गया। शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय और नॉर्वे की कंपनियों और संस्थाओं के बीच कई व्यापारिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उच्च स्तरीय व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन से पहले ओस्लो में विभिन्न स्थानों पर 4 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे। इन सत्रों में स्वास्थ्य सेवा में नवाचार, समुद्री सहयोग, बैटरी और ऊर्जा भंडारण प्रणाली, डिजिटलीकरण और विद्युतीकरण तथा पवन ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किया गया।
On the last leg of his 5-nation visit, Prime Minister Narendra Modi will arrive in Rome, Italy, on a 2-day state visit today at the invitation of his Italian counterpart, Giorgia Meloni. Prime Minister Modi will have bilateral talks with Prime Minister Meloni. He will also call on the President of Italy, Sergio Mattarella. Mr. Modi is scheduled to hold talks with business leaders to further promote trade and investment between the two countries, and members of the Indian diaspora in Italy have welcomed the visit. Foreign-born with first Padma Shri awardee artist and renowned Odissi dancer Ileana Sitharisthi said the visit reflects the strong cultural bond between India and Italy. Diaspora members Vijay Topo and Vichitra Singh said stronger cooperation in technology and dairy sectors could create new opportunities for Indian youth.
हमारे प्रधानमंत्री का यहाँ आना यह हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट है, खुशी की बात है। विशेषकर भारतीय जो यहाँ रहते हैं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आना यहाँ पर एक न केवल पॉलिटिकल रिलेशनशिप को बढ़ाएगा, साथ साथ ये मानवीय और कल्चरल रिलेशनशिप को भी मजबूत करेगा।
मेरा नाम विचित्र सिंह है और मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ और मुझको यहाँ इटली में रहते हुए 25 साल हो गए। मैं शुरू से ही डेयरी फार्म में जॉब कर रहा हूँ, अच्छा एक्सपीरियंस है। तो अब जैसे प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ आ रहे हैं इटली में, तो जैसे जानकारी है कि वो इसी सेक्टर में और कुछ और सेक्टर में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करके जाएंगे, तो एक अच्छा इनिशिएटिव है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया है। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के प्रति वचनबद्ध है, लेकिन वो परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है।
Judges Inquiry Committee investigating allegations concerning Justice Yashwant Verma submitted its report to Lok Sabha Speaker Om Birla at the Parliament House. It was presented in accordance with the statutory requirements under the Judges Inquiry Act 1968. The report will be laid in both Houses of Parliament in due course. The committee was constituted by Lok Sabha Speaker on 12th August last year. Presiding Officer of Judges Inquiry Committee, Supreme Court Judge Justice Arvind Kumar, along with Justice Chief Justice of the Bombay High Court, Justice Sri Chandrasekhar, and Senior Advocate Karnataka High Court, B.B. Acharya, presented the report of Judges Inquiry Committee to Mr. Birla.
पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। ये कार्रवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश और सीबीआई की जांच के बाद की गई है। संदीप घोष पर मेडिकल कॉलेज में खरीद से जुड़े मामलों में वित्तीय अनियमितताओं का आरोप है। सीबीआई ने भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के तहत मामला दर्ज किया है, जबकि प्रवर्तन निदेशालय भी धन शोधन के पहलुओं की जांच कर रहा है। सरकार ने उस YouTube वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत में केवल 9 दिन का तेल भंडार बचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावा भ्रामक है। जांच इकाई ने बताया कि भारत के पास लगभग 60 दिनों के कच्चे तेल का भंडार है और शोधन क्षमता भी पर्याप्त है। जांच इकाई ने बताया कि देश में कहीं भी पेट्रोल, डीजल या एलपीजी की कमी नहीं है और ईंधन आपूर्ति की स्थिति स्थिर, सुरक्षित और लगातार निगरानी में है। जांच इकाई ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे घबराए नहीं और ईंधन तथा गैस की उपलब्धता के संबंध में केवल सरकारी सूत्रों द्वारा जारी जानकारी पर ही भरोसा करें।
Union Minister of Ports, Shipping and Waterways, Sarbananda Sonowal, chaired a review meeting in New Delhi on the rollout of the much-anticipated water metro services in the country. He said the centre has advanced plans to roll out water metro services in 18 cities, with Guwahati among those identified for Phase 1. Cities including Srinagar, Patna, Varanasi, Ayodhya and Prayagraj are also part of Phase 1, while Tezpur and Dibrugarh in Assam have been proposed for Phase 2 of the project. Highlighting the initiative, Mr. Sonowal said the proposed water metro system is significantly less capital intensive as it utilizes existing waterways with minimal civil infrastructure.
आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्ले ऑफ में जगह बना ली है। चेन्नई में खेले गए मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 19 ओवर में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से जयपुर में शाम 7:30 बजे से होगा। और अब आपको महानगरों का हाल बताते हैं, शुरुआत कर रहे हैं दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के समाचारों से। पहले दिल्ली की खबर। भारतीय संत महापरिषद का वैश्विक सम्मेलन कल नई दिल्ली स्थित रामकृष्ण मिशन में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य सांस्कृतिक सद्भाव को बढ़ाना, सभ्यतागत एकता को आध्यात्मिक संवाद से जोड़ना और भारत में निहित साझा परंपराओं के माध्यम से भारतीय मूल्यों का पुनरुद्धार करना था। सम्मेलन के दौरान संतों ने भारत भर में संस्कार केंद्रों की स्थापना पर चर्चा की। इसके अलावा सम्मेलन में भाग लेने वालों ने भावी पीढ़ियों के लिए भारत की आध्यात्मिक और सभ्यतागत विरासत के संरक्षण पर बल दिया। दिल्ली की एक और खबर। दिल्ली नगर निगम MCD ने करोल बाग जोन में धूल नियंत्रण उपायों को सुदृढ़ करने और प्रमुख लोक निर्माण विभाग ने सड़कों पर स्वच्छता में सुधार सुनिश्चित करने के लिए 15 दिवसीय धूल मुक्त सड़क अभियान शुरू किया है। ये अभियान निरंतर मशीनों द्वारा सड़क सफाई, मैनुअल सफाई और बड़े पैमाने पर धूल हटाने की गतिविधियों के माध्यम से सड़कों को नो डस्ट स्थिति में बनाए रखने पर केंद्रित है। इस सफाई अभियान में MRS मशीनें, वाटर स्प्रिंकलर, ASG पानी के टैंकर, ऑटो टिपर और साथ ही 40 सफाई कर्मचारियों को तैनात किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत प्रमुख सड़क मार्गों की नियमित निगरानी, कचरे का त्वरित उठान और निरंतर रखरखाव पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है, ताकि दीर्घकालिक धूल नियंत्रण और बेहतर सार्वजनिक स्वच्छता सुनिश्चित की जा सके।
Moving over to Chennai, the Tamil Nadu government carried out a major reshuffle in several departments including municipal administration, energy, transport, water, resources and Greater Chennai Corporation and Chennai Metropolitan Development Authority. Gagandeep Singh Bedi has been transferred and posted as additional chief secretary to government municipal administration and water supply department. Dr. G.S. Samiran has been appointed as commissioner of Greater Chennai Corporation, replacing J. Kumar Guru Baran. Satya Brata Sahu has been transferred as Principal Secretary to Government Youth Welfare and Sports Development has been transferred to Government Water Resources Department. P. Amuda, Additional Chief Secretary, has been posted to Government Corporation Food and Consumer Protection.
Ab Mumbai, Maharashtra ki khabar. Maharashtra Awas aur Vikas Pradhikaran MHADA ke Mumbai Board ne 2640 फ्लैटों के लिए आवेदन जमा करने की समय सीमा बढ़ा दी है। इन फ्लैटों को 30 मार्च 2026 को बिक्री के लिए पेश किया गया था। सोमवार को मुंबई से जारी एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार अब आवेदन 28 मई 2026 तक जमा किए जा सकते हैं। इसके अलावा लॉटरी में शामिल कन्नमवार नगर विक्रोली पूर्व परियोजना के 1221 फ्लैटों में से MHADA ने बताया कि 610 फ्लैट अब विशेष रूप से उच्च आय वर्ग के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। बोर्ड ने बताया कि अब तक 78,976 आवेदन प्राप्त हुए हैं। प्राधिकरण ने बताया कि आवेदनों के अनंतिम सूची 10 जून को प्रकाशित की जाएगी, जबकि अंतिम सूची 16 जून को MHADA की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। फ्लैटों की बिक्री के लिए कंप्यूटरीकृत लॉटरी ड्रॉ की तारीख, स्थान और समय की घोषणा बाद में की जाएगी। महाराष्ट्र मुंबई की एक और खबर, महाराष्ट्र सरकार ने 6 तीर्थ स्थलों के विकास के लिए 993,72,00,000 रुपए की फंडिंग की मंजूरी दी है। इन स्थलों में भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर, परली वैजनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर, घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर, देहू में संत तुकाराम महाराज जन्म स्थान, सतारा में अजिंक्य तारा किला और छत्रपति शाहू महाराज का समाधि स्थल शामिल है। सोमवार को हुई एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि विकास योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को ये भी निर्देश दिया कि वे इन सभी स्थलों पर श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित करें।
मूविंग ऑन टू बेंगलुरु, Karnataka state government is organizing Sadhana Samvesha to commemorate its third anniversary. The anniversary celebration of the government will be marked by handing over title deeds of properties to 1.52 lakh beneficiaries at a public event to be held in Tumkuru tomorrow. The opposition party BJP in the state has criticized the government for holding the event when scores of farmers are committing suicide in the state. The leader of the opposition, R. Ashoka, charged that the convention is organized by misusing the tax money of the people. Vishveshwaraya Technology University of Karnataka has joined hands with Newski company to train their engineering students with a DGCA remote pilot certification to procure a drone license. The Directorate General of Civil Aviation, DGCA, issues the drone license for the trained engineers. This one-week training will help them to operate drones.
अब कोलकाता पश्चिम बंगाल की खबर, भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय और पश्चिम बंगाल सरकार ने सोमवार को पश्चिम बंगाल में जल जीवन मिशन को लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान कोलकाता में जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग तथा जन स्वास्थ्य और इंजीनियरिंग विभाग के बीच एक वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठक में हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल उपस्थित थे। अपने वीडियो संबोधन में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य में जल जीवन मिशन को पूरी मुस्तैदी के साथ लागू किया जाएगा। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि ममता बनर्जी की नेतृत्व वाली सरकार के दौरान इस कार्यक्रम को जमीनी स्तर पर लागू नहीं किया गया था। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि जल जीवन मिशन को लागू करने के लिए धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके तहत हर घर को पाइप से पेयजल की सुविधा प्रदान की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि आंगनवाड़ी केंद्रों और प्राथमिक विद्यालयों को भी पाइप से पेयजल के कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे।
न्यूज फ्रॉम हैदराबाद, Oil marketing companies in Telangana have confirmed that petrol, diesel and cooking gas supplies are sufficient and stable across the state. There is no shortage of any fuel product anywhere. The companies said they are closely monitoring supply and improving delivery systems. During the first half of May, petrol supplies increased by 14.2% and diesel supplies went up by 15.7%.
और अब महानगरों दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के मौसम का हाल जानते हैं। राजधानी दिल्ली में आज लू चलने और दोपहर बाद और शाम को तेज हवाएं चलने की संभावना है। अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। वहीं मुंबई में आसमान साफ रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। कोलकाता में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ बारिश होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।
Weather news from Chennai, Bengaluru and Hyderabad. Chennai is expected to have a generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature was 28 degrees Celsius and maximum will be around 37 degrees. Bengaluru is expected to have thunderstorm with rain. The minimum temperature was 22 degrees Celsius and maximum will be around 33 degrees. Hyderabad is expected to have a partly cloudy sky with possibility of development of thunder lightning. The temperature will hover between minimum of 29 degree and a maximum of 40 degree Celsius.
और अब समय है इतिहास में दर्ज आज की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के जिक्र का. आज 19 मई है. देश और दुनिया के इतिहास में आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है.
इन
स्पेनिश विजेता मिगुएल लोपेज डी लेगा जपी ने मनीला शहर की स्थापना की. इसे स्पेनिश ईस्ट इंडीज की राजधानी घोषित किया गया.
In 1743, French scientist Jean-Pierre Christin developed the Lyon thermometer, introducing the centigrade scale based on the freezing and boiling points of water.
1780 में आज ही के दिन न्यू इंग्लैंड का काला दिन तब हुआ जब दोपहर के समय अमेरिका और कनाडा के कुछ हिस्सों में अंधेरा छा गया. इसकी वजह संभवतः बड़े पैमाने पर लगी जंगल की आग और घना कोहरा था.
In 1862, President Abraham Lincoln signed the Homestead Act, allowing citizens to claim 160 acres of surveyed government land. And in 1919, Mustafa Kemal Atatürk landed at Samsun, launching the Turkish War of Independence and beginning the creation of modern Turkey.
1911 में आज ही के दिन डोमिनियन पार्क्स ब्रांच या पार्क्स कनाडा की स्थापना हुई जिससे ये दुनिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान सेवा संगठन बना. 1950 में आज ही के दिन मिस्र ने इसराइली जहाजों के लिए स्वेज नहर बंद कर दी जिससे पश्चिम एशिया में भू राजनीतिक तनाव बढ़ गया.
In 1959, the North Vietnamese Army established Group 559 to build and maintain the strategic Ho Chi Minh Trail.
1971 में आज ही के दिन भारतीय नौसेना ने विशाखापत्तनम में अपना पहला पनडुब्बी बेस आईएनएस वीर बाहु शुरू किया. और अब याद करते हैं उन महान विभूतियों को जिनका आज जन्मदिन जयंती या पुण्यतिथि है.
फ्रेडरिक ऑग्डन नैश वॉज एन अमेरिकन पोएट वेल नोन फॉर हिज लाइट वर्स ऑफ विच ही रोट मोर देन 500 पीसेस विद हिज अनकन्वेंशनल राइमिंग स्कीम्स. ही वॉज डिक्लेयर्ड बाय द न्यूयॉर्क टाइम्स टू बी द कंट्रीज बेस्ट नोन प्रोड्यूसर ऑफ ह्यूमरस पोएट्री. If that doesn't make you smile, I'm sure this poem by Ogden Nash will sprinkle some humor to make your morning bright.
How wise I am to have instructed the butler, to instruct the first footman, to instruct the second footman, to instruct the doorman to order my carriage. I am about to volunteer a definition of marriage. Just as I know there are two Higgins, Walter and Copen, I know that marriage is a legal and religious alliance entered into by a man who can't sleep with the window shut and a woman who can't sleep with the window open.
आज पुण्यतिथि है विजय तेंदुलकर की. उनका जन्म 6 जनवरी 1928 को कोल्हापुर महाराष्ट्र में हुआ था. उनका नाम आधुनिक भारतीय नाटक और रंगमंच के विकास में अग्रणी है. 5 दशक से ज्यादा समय तक सक्रिय रहे तेंदुलकर ने रंगमंच और फिल्मों के लिए लिखने के अलावा कहानियां और उपन्यास भी लिखे. विजय तेंदुलकर ने 50 से भी अधिक नाटकों की रचना की है. हिंदी में उनके 30 नाटकों का अनुवाद और मंचन किया जा चुका है. खामोश अदालत जारी है, गिद्ध, सखाराम बाइंडर, जात ही पूछो साधु की, घासीराम कोतवाल, कन्यादान, कमला आदि नाटकों के जरिए तेंदुलकर की जो छवि नाट्य जगत में स्वीकृत हुई वो मराठी नाटककार की ही सीमा में बंधकर नहीं रह सकी. निशांत आदि कई समानांतर सिनेमा आंदोलन से जुड़ी फिल्मों की पटकथा उन्होंने लिखी. महाराष्ट्र के सांस्कृतिक जीवन में उनका व्यक्तित्व अलग से पहचाना जाता है. उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, कालिदास सम्मान, पद्म भूषण, महाराष्ट्र राज्य सरकार सम्मान, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड, महाराष्ट्र गौरव आदि से सम्मानित किया गया था. आइए सुनते हैं उनका नाटक शांतता को चालू आहे का संवाद.
आरोपी मिस लीला बेनारे, तुमच्यावर ठेवण्यात आलेला आरोप तुम्हास मान्य आहे की अमान्य?
तुमच्यावर तो ठेवला तर तुम्ही मान्य कराल.
ऑर्डर ऑर्डर. कोर्टाचा आदर कोणत्याही परिस्थितीत राखला गेला पाहिजे.
कोर्टाचं काम
की भ्रूण हत्येचं कामकाज, त्यापेक्षा तुम्ही माझ्यावर सार्वजनिक मालमत्तेच्या अपहाराचा का नाही आरोप.
टुडे इज द बर्थडे ऑफ अ बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड, द बॉन्ड ऑफ वर्ड्स अँड बुक्स इन द लिटररी सेन्स. Lovingly addressed as Rusty, he is an Indian author and poet. Bond has authored more than 500 short stories, essays and novels, which include 69 books for children. He was awarded the Sahitya Akademi Award in 1992 for Our Trees Still Grow in Dera. He was awarded the Padma Shri in 1999, Padma Bhushan in 2014. He attended Bishop Cotton School in Shimla, graduating in 1951. There he won several writing competitions, including the Irwin Divinity Prize and the Haley Literature Prize. He has written essays and novels including The Blue Umbrella, Funny Side Up, A Flight of Pigeons and more than 50 books for children. Coming from Rusty, every word is a pearl of wisdom to be remembered and be joyous and happy. His books are a delightful, unputdownable read. His style may be simple but carry the depths of the most sought after thing of called happiness. So let's hear from the bond.
As I walked home last night, I saw a lone fox dancing in the bright moonlight. I stood and watched, then took the low road, knowing the night was his by right. Sometimes when words ring true, I'm like a lone fox dancing in the morning dew.
आज पुण्यतिथि है शंभु मित्रों की. उनका जन्म 22 अगस्त 1915 को हुआ था. वे रंगमंच के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक और नाटककार थे. उन्हें मुख्य रूप से बांग्ला थिएटर में उनके योगदान के लिए जाना जाता है. उन्होंने 1939 में व्यावसायिक रंगमंच में प्रवेश किया. 1948 में उन्होंने मनोरंजन भट्टाचार्य के नेतृत्व में बहुरूपी नामक रंगमंच मंडली की स्थापना की. 1949 से 1971 तक बहुरूपी ने उनके निर्देशन में रविन्द्रनाथ टैगोर, सोफोक्लीज, हेनरिक इप्सन, तुलसी लाहिड़ी और अन्य प्रमुख नाटककारों की रचनाओं का मंचन किया. शंभू मित्रा को उनकी फिल्मों धरती के लाल और जागते रहो से विशेष तौर पर पहचान मिली. उन्हें पद्म भूषण और रमन मैक्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. आइए सुनते हैं उनका कविता पाठ.
हवा बॉय शनशन तारारा कांपे, हवा बॉय शनशन तारारा कांपे, हृदय की जंग धरे पुरोनो खापे, कार चूल एलो मेलो किवताते एलो गेलो, कार चोखे कतो जल केवता मापे, हृदय की जंग धरे पुरोनो.
सिद्धार्थ Sid Sriram is an Indian Carnatic musician, music producer, playback singer. He's an R&B songwriter and has been working in the Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, Hindi, Marathi and English music industry. He regularly collaborates with his sister Pallavi Sriram, a Bharatnatyam dancer and music director. Let's listen to this melodious song sung by Sid Sriram.
காலம் நீ கடல் நீ கரையும் நீ காட்டு கூட.
आज जयंती है गिरीश कर्नाड की. उनका जन्म 19 मई 1938 को माथेरान महाराष्ट्र में हुआ था. वे एक जाने माने कवि, रंगमंच कर्मी, कहानी लेखक, नाटककार, फिल्म निर्देशक और अभिनेता थे. उन्होंने हिंदी में उत्सव, मंथन, इकबाल, डोर, एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है जैसी फिल्मों में काम किया. उनके लिखे नाटकों में ययाति, तुगलक है वदन, अंजू मल्लिगे, अग्निमतु, माले, नागमंडला, अग्नि और बरखा आदि बहुत प्रसिद्ध हैं. आइए सुनते हैं उनकी अंतिम फिल्म टाइगर जिंदा है का संवाद.
विच इज नॉट जस्ट एक्शन ओरिएंटेड बट विच ऑल्सो गिव्स स्कोप फॉर थॉट, फॉर इमोशन, यू नो, टू एक्सप्लोर द होल सिचुएशन, नॉट मेयरली इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर एंड इमोशन बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ अ फिलोसॉफिकल एनालिसिस. दैट प्रॉब्लम हैड बीन ब्रोकन फॉर मी विद दैट स्टोरी बाय थॉमस मॉन ऑलरेडी, सो इट वॉज अ मच इजियर प्ले टू राइट. ऑल्सो द फॉर्म वॉज सिंपलर.
हेलो
इंडिपेंडेंस डे मुबारक हो सर.
तुम्हें मालूम था कि अगर उस दिन तुम हमारे साथ निकलते तो रॉ तुम्हें कभी नहीं छोड़ता.
लेकिन एक बात याद रखिए सर, कि अगर देश को कभी भी मेरी जरूरत पड़े।
आज जन्मदिन है नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, सिद्दीकी का। उनका जन्म 19 मई 1974 को बुढ़ाना उत्तर प्रदेश भारत में हुआ है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अभिनय का प्रशिक्षण और अध्ययन करने के बाद सिद्दीकी ने सरफरोश शूल और मुन्ना भाई MBBS जैसी फिल्मों में छोटी भूमिकाएं निभाई। आइए सुनते हैं उनके द्वारा अभिनीत फिल्म मंटो का संवाद।
नीम के पत्ते कड़वे से ही खून तो साफ करते हैं। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि मेरी कहानी एक आईना है जिसमें समाज अपने आप को देख सके, और अगर किसी बुरी सूरत वाले को आईने से ही शिकायत हो तो उसमें मेरा क्या कसूर। अगर आप मेरी कहानी को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इसका मतलब यह है कि इस जमाना ही नाकाबिले बर्दाश्त है।
और अब आपसे विदा लेने का समय हो गया है, तो अनुमति दीजिए कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की।
हैव अ सुपर्ब डे।
नमस्कार।